नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में समुद्री क्षेत्र में पिछले एक दशक में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्वविद्यालयों से विद्यार्थियों की छिपी प्रतिभा और कौशल को उभारने का आह्वान किया। आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने हवाई इंजनों के लिए उम्दा किस्म की नई धातु की खोज की। और प्रदेश में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से 1,99,000 से ज्यादा पट्टे वितरित किए गए। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र भारत के विकास को गति प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में इस क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है और व्यापार तथा बंदरगाह अवसंरचना को बढ़ावा मिला है। श्री मोदी ने आज मुंबई में भारत समुद्री सप्ताह 2025 के अंतर्गत एक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत का समुद्री क्षेत्र तेज गति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत के बंदरगाह विकसित देशों से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।
साल 24-25 में भारत के मेजर पोर्ट्स ने अब तक का सबसे अधिक कार्गो हैंडल करके भी नया रिकॉर्ड बनाया है। इतना ही नहीं, पहली बार किसी इंडियन पोर्ट ने मेगावाट स्केल इंडिजीनियस ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी शुरू की है और ये उपलब्धि हमारे कांडला पोर्ट ने हासिल की।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज हरियाणा के अंबाला स्थित वायुसेना स्टेशन से राफाल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। ये उड़ान लगभग 25 मिनट की थी। भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति मुर्मू ने इससे पहले अप्रैल 2023 में असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन पर सुखोई 30 एमकेआई लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव और राव इंद्रजीत सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग 919 पर दीर्घकालिक जल भराव समस्या पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें अपशिष्ट जल निस्तारण और पर्यावरणीय संतुलन पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में भिवाड़ी और धारूहेड़ा दोनों शहरों में जल भराव के स्थायी निवारण पर सहमति बनी ताकि वर्ष भर निर्बाध यातायात संचालित हो सके। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि एनएचएआई को वर्षा जल को मसानी बैराज तक सुचारू रूप से प्रवाहित करने के लिए स्थायी नाले और मजबूत ड्रेनेज प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं।
हमने सबने मिलकर इस बात पर सहमति करी है कि भिवाड़ी और धारूहेड़ा का मिलकर पानी का समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि भिवाड़ी में हम 34 MLD का पहले ही हम लोगों ने एसटीबी का प्लान तैयार कर लिया है दिसंबर जनवरी में, जिसका हम लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये जो बारिश का पानी जाने का विषय है, इसका समाधान एनएचआई के साथ मिलकर करेंगे।
राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज कोटा के राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालयों से विद्यार्थियों की छिपी प्रतिभा और कौशल को उभारने का आह्वान किया ताकि वे नवाचारों के केंद्र बन सकें। राज्यपाल ने व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने पर जोर दिया।
विद्यार्थियों के मन में, दिल में, उनके अंग में ऐसे कला कौशल्य होते हैं कि उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल जाए तो निश्चित तौर से तो अपनी कला अधिक प्रभावी कर सकेंगे।
उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता युवाओं को रोजगार परक शिक्षा प्रदान करना है। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के सभी सवालों और शिकायतों के समाधान के लिए राष्ट्रीय मतदाता हेल्पलाइन और सभी 36 राज्यों में राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय हेल्पलाइन शुरू कर दी है। राष्ट्रीय संपर्क केंद्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय हेल्पलाइन के रूप में काम करेगा। ये टोल फ्री नंबर 1800-111-1950 रोजाना सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करेगा। निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिले को अपना अपना राज्य और जिला संपर्क केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने बीएलओ के साथ बुक कॉल सुविधा भी शुरू की है। इसके इस्तेमाल से नागरिक अपने संबंधित बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। ये सुविधाएं चुनाव संबंधी शिकायतों के समाधान की वर्तमान व्यवस्था के अलावा हैं। नागरिक अपनी शिकायतें complaints@eci.gov.in पर भेज सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने विमानों और रॉकेटों के इंजन के लिए बहुत ही उम्दा किस्म की धातु बनाने में सफलता हासिल की है। इस खोज से विमानों के इंजन का वजन आधा रह जाएगा और ईंधन भी कम खर्च होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये धातु 900 डिग्री सेल्सियस जैसी भयंकर गर्मी में भी टूटती नहीं है और अपनी ताकत बनाए रखती है। अभी इस्तेमाल होने वाली धातुएं या तो बहुत भारी होती हैं या गर्मी से कमजोर पड़ जाती हैं। ये नई धातु हल्की, मजबूत और टिकाऊ होने के कारण देश के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाली है। प्रदेश में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से लाखों लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया है। 17 सितंबर से 25 अक्टूबर तक 1,99,000 से अधिक पट्टे वितरित किए गए। नागरिकों को 1,75,000 से ज्यादा मूल निवास प्रमाण पत्र और 2,00,000 से ज्यादा जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में 17,00,000 से ज्यादा किशोरियों और गर्भवती महिलाओं की एनीमिया जांच भी की गई। शिविरों में 2,67,000 से ज्यादा मंगला पशु बीमा पॉलिसी भी जारी की जा चुकी है। कृषि और उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक और पेस्टिसाइड उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने निम्न गुणवत्ता की सामग्री देने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इसी क्रम में मंत्री ने हनुमानगढ़ में निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर 2 निजी फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की। निरीक्षण में पाया गया कि इन संस्थाओं ने प्रमाणीकरण प्रक्रिया के अनुसार न्यूनतम बीज उत्पादन कार्यक्रम नहीं लिया। नियमों की पालना नहीं होने पर दोनों बीज उत्पादक संस्थाओं के पंजीकरण प्रमाण पत्र और बीज विधायन केंद्र संख्या निरस्त कर दिए गए हैं। रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 6ठा चरण शनिवार से शुरू हो रहा है। ये योजना राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत एमओयू करने वाले निवेशकों के लिए है। निवेशक आगामी 13 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस चरण के लिए ई लॉटरी 18 नवंबर को निकाली जाएगी। इस बार जयपुर, जोधपुर, बीकानेर जिलों के 100 रीको औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 6,000 औद्योगिक भूखंड उपलब्ध होंगे। और अब मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण राज्य के मौसम में आज भी उतार चढ़ाव देखने को मिला। जहां सवाई माधोपुर में बारिश का दौर थमने के बाद धूप खिलने से लोगों ने राहत महसूस की, वहीं बालोतरा, बाड़मेर, जालौर और पाली सहित कुछ जिलों में दिन भर बादलों की आवाजाही रही और हल्की बूंदाबांदी हुई। सिरोही जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण तापमान में गिरावट आने से सर्दी महसूस होने लगी है। इस बारिश को गेहूं और सरसों की फसल के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है, लेकिन इससे कपास की फसल को नुकसान पहुंचा है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के सिलसिले में जयपुर में शनिवार को एकता मार्च का आयोजन किया जाएगा। युवा मामले और खेल विभाग के शासन सचिव डॉ. नीरज कुमार पवन ने आज इसकी तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मार्च सुबह 6 बजे से गांधी सर्किल से शुरू होकर बिरला मंदिर, रामबाग, अंबेडकर सर्किल होते हुए अमर जवान ज्योति पर समाप्त होगा। केंद्रीय श्रम, रोजगार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज शाम नई दिल्ली में इस वर्ष का आकाशवाणी सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान देंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। व्याख्यान की रिकॉर्डिंग 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय संचार ब्यूरो कोटा द्वारा बूंदी के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कल से 2 दिन की मल्टीमीडिया प्रदर्शनी लगाई जाएगी। ये प्रदर्शनी केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियों, जीएसटी बचत उत्सव और राष्ट्रीय एकता दिवस विषयों पर केंद्रित रहेगी। प्रदर्शनी के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए तकनीकी सत्र और राष्ट्रीय एकता विषय पर आधारित प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। जयपुर की रिजर्व पुलिस लाइन में 75 लाख रुपए की लागत से बनी डिजिटल लाइब्रेरी आज से शुरू हुई। पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल और ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। पुलिस आयुक्त ने कहा कि ये केंद्र पुलिस कर्मियों की कार्य दक्षता और क्षमता बढ़ाने में सहयोगी रहेगा। पुलिस कर्मियों के साथ साथ उनके परिवारजन भी इस डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ ले सकेंगे। प्रदेश में गोपाष्टमी पर्व धार्मिक उल्लास और पारंपरिक तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गौशालाओं में पहुंचकर गायों का विधि विधान से पूजन किया और उन्हें हरा चारा, गुड़ और चना खिलाया। भरतपुर की गढ़ी सांवलदास गौशाला के अलावा भुसावर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस अवसर पर कई स्थानों पर अन्नकूट महोत्सवों का भी आयोजन किया गया, जहां ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आगामी 2 नवंबर को ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन किया जाएगा। ये परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। जयपुर में परीक्षा के लिए 250 केंद्र बनाए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में समुद्री क्षेत्र में पिछले एक दशक में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्वविद्यालयों से विद्यार्थियों की छिपी प्रतिभा और कौशल को उभारने का आह्वान किया। आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने हवाई इंजनों के लिए उम्दा किस्म की नई धातु की खोज की। और प्रदेश में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से 1,99,000 से अधिक पट्टे वितरित किए गए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।